Hare Krishna. So devotees wanted little warmness. So we cleared the kitchen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Ajnanti Miranda Shri Nanajana Shalakya Chakshara Indutaniya Dasmai Shri Guru Verma Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Svadvaita Kadadra Shripasa Nagaur Bhakta
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram
Hare Hare. Abhi humna aapke saath do prasiddh Vaishnav song gaye. Dono mein एक में हमने कृष्ण को स्तुति किया, कृष्ण की स्तुति, और दूसरे में चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में वर्णन किया उनके आगमन का. हमारे भक्तों ने, आचार्यों ने वैष्णव गीत में सुंदर लिखे हैं कि उन गीतों में वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं और भक्ति से भरे होते हैं. कई बार हम लोग ऐसे ही कोई सो कॉल्ड रिलीजियस सॉन्ग कई बार गाने लगता है, हमें अच्छा लगता है. जैसे कभी आप गुजरात में भी ऐसा सिस्टम है कि आप रणछोड़ राय मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर में जाइए तो गुजराती भाषा में कुछ सॉन्ग बनाए हैं. किसी का हम क्रिटिसाइज नहीं करते, सारे भगवान की स्तुति के लिए बनाए हैं. लेकिन फिर भी हमारे जो सिद्ध वैष्णव होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए सॉन्ग होते हैं उसमें शुद्धता होती है और भक्ति का स्वाद उसमें प्राप्त होता है. यद्यपि हमारे लिए तो सारे ही भगवान के संबंध में जो सॉन्ग है वो दिव्य है. भगवान के नाम दिव्य है, भगवान के गुणगान दिव्य है. इसलिए हम आप सबके साथ हमने कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही शुरू किया था. इतना बड़ा कथा है और हमें भी अच्छा लगता है ये कथा गिरिराज गोवर्धन का, क्योंकि इसमें गिरिराज जी का गुणगान गाया है और गिरिराज जी से श्रील प्रभुपाद का घनिष्ठ संबंध है. गिरिराज जी कोई बताएगा कैसे घनिष्ठ संबंध है?
राधाकुंड जो है वो गोवर्धन में आता है और राधाकुंड में ही प्रभुपाद जी को उनके गुरु जी ने आदेश दिया था कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार.
वो खुद ग्वाले हैं.
अच्छा, ओके, ठीक है, अच्छा है. लेकिन श्री प्रभुपाद उन्होंने अपने अंतिम इच्छा में भी उन्होंने जब भगवत धाम जाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसा इच्छा प्रस्तुत किया था कि वो गोवर्धन का परिक्रमा करना चाहते थे. हालांकि उनकी परिक्रमा हुई थी लेकिन उनके देहांतर के उनके लीलांतर नित्य लीला प्रविष्ट होने के बाद. और कोई एनीवेयर एल्स और कोई So Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu ne Govardhan ka parichay karaya aur Srila Prabhupada ne hame Govardhan ki seva karna sikhaya. Is Giriraj ji ka अभी हम कुछ समय से वो चर्चा कर रहे थे, तो हम प्रयास करेंगे उसी चर्चा को थोड़ा आगे करेंगे. जब कृष्णा नंद महाराज के पास गए थे और जो प्रश्न पूछे थे, इसकी चर्चा हमने पहले की थी आप सबके साथ, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. नंद महाराज ने उत्तर दिया था कि ये पूजा करनी चाहिए, जैसे हमें इंद्र है, इंद्र का इंद्र हमें गये ये बारिश देते हैं, ये देते हैं, घास देते हैं इत्यादि, सब हमारा निर्वाह करते हैं, सब बताया. तब भगवान ने सोचा कि इंद्र की उपासना मेरे भक्त क्यों करेंगे. जो भगवान के भक्त होते हैं उनको देवी देवताओं की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो किसी एक देव की, एक देवी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है. आप कहेंगे नहीं, लेकिन अगर हमारे कुलदेव कुलदेवी अगर होते हैं तो उनकी उपासना नहीं करने से तो अपराध होता है. तो ऐसा ही कुछ भाव वृंदावन वासियों का था कि अगर परंपरा चल रही है, अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ अपराध होगा. भगवान इंद्र हमारे हमसे नाराज हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है. तो फिर भगवान ने उल्टी पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया. बिल्कुल उल्टा ही संदेश. सोच ये, इसका अर्थ तो ये होता है कि भगवान अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं. भगवान का निजी स्वार्थ एक्चुअली उत्तम होता है, हमारे ऐसा नहीं होता है. भगवान का निजी स्वार्थ भक्त के हित में होता है, सृष्टि के हित में होता है. तो भगवान ने ये सोचा कि मेरे भक्त क्यों पूजा करेंगे देवी देवताओं की. तो भगवान ने टेम्पररीली कर्मवाद, कर्म मीमांसावाद बताना शुरू कर दिया. कोई भी पढ़ेगा तो हाँ सही कह रहे भगवान, हालांकि बिल्कुल झूठ है, एक नंबर, एकदम गलत. इसमें कोई फिलोसॉफी जैसा कुछ था ही नहीं, एकदम नास्तिकवाद, कर्म मीमांसावाद कुछ. जब मैं छोटा था पहली बार कृष्ण को पढ़ा, मैं हाय हाय ये क्या कह रहे हैं कृष्ण. लेकिन प्रभुपाद ने साथ साथ में कमेंट्री दिया है, तो प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया कि भगवान कर्म मीमांसावाद का उपयोग कर रहे हैं अपने भक्त को, अपने गोविंद को. खास करके उनका उद्देश्य था इंद्र को उकसाने के लिए. इसकी ही पूजा नहीं, इसकी पूजा करनी ही नहीं चाहिए, इसकी पूजा ही मत करो. इंद्र का ऐसा अभिमान था, ये गोप ये रूप क्या है, ऐसा बहुत अभिमान था उसको. तो भगवान उसका अभिमान दूर करना चाहते थे. तो भगवान ने ऐसा कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करनी है. भगवान मुख्यमंत्री सारांश रूप में बताएंगे आपको, पूरा तो नहीं बताएंगे. भगवान ने ऐसा कहा कि कर्म कैसे बात बताया, छोटा सा ये फिलोसॉफी में बता रहा हूँ, ये गलत फिलोसॉफी है. श्री भगवान वाचा करके ऐसा नहीं कि हाँ श्री भगवान वाचा तो बस सही है, ऐसा नहीं. ये गलत फिलोसॉफी भगवान बता रहे हैं. क्या भगवान बता रहे हैं कि कर्म ही व्यक्ति को जन्म देने के लिए बाध्य करता है, और उसके कर्म के कारण ही उसको उसका नाश होता है, मृत्यु होती है. उसका सुख दुख भय इत्यादि सब कुछ कर्म की कर्म के कारण होता है. कर्म ही सब कुछ है, ऐसा उनका मानना था. तो अगर कर्म कोई करेगा तो उसको फल मिलेगा, कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहां से मिलेगा। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, सब हमारे कर्मों के कारण है। कर्म कर्म ही भगवान है, भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ हमारे कर्म पर निर्भर है। इसमें इंद्र का क्या लेना देना, इंद्र को इससे क्या लेना देना। भगवान कहते हैं कि जो जिसने जो कुछ कर्म किए अच्छे बुरे, उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसको उसका सुख दुख या वो सब मिलता है। इसमें इंद्र बीच में कहाँ आया, सो हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, ऐसा सब बता रहे। फिर आगे बताना शुरू किया उन्होंने कि कर्म के कारण मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं और उसके स्वभाव के अनुसार वो अपने अपनी पूजा करते हैं। उसमें क्या लेना देना, कर्म का इंद्र का क्या लेना देना। बारिश बरसाते हैं इंद्र, चलो हम पूरी फिलोसॉफी तो नहीं पढ़ते लेकिन बारिश बरसाते हैं। तो भगवान ने ऐसा तर्क दिया कि बारिश बरसाते हैं तो इसमें सब जगह उसका कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान से नहीं हो रहा है वो, तो कहीं पर भी बारिश होती है, समुद्र में भी बारिश होती है और मैदान में भी बारिश होती है। तो वो प्लान से बारिश अगर वहाँ पर कौन यज्ञ करने जाता है, वहाँ पर कौन सा इंद्र यज्ञ होता है, फिर भी बारिश आता है। इसलिए इंद्र की पूजा की क्या आवश्यकता है। फिर कहा कि बारिश सृष्टि के कारण होती है, सृष्टि बोलते हैं, पता है बारिश को बंगाली भाषा में उसको वृष्टि कहते हैं, लेकिन भागवत के अनुसार बारिश रजोगुण से संपर्क में, रजोगुण के कारण बारिश होती है। जैसे रजोगुण सर्जन का काम करता है, कुछ चीज बनाना वो रजोगुण का काम है, सत्वगुण का काम है पालन करना। ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना किया तो वो रजोगुण के कारण रचना किया, उन्होंने सृष्टि का सर्जन कैसे किया, उन्होंने अपने पुत्र का जन्म दिया, फिर कुछ मानस पुत्र आए मन से, कुछ उन्होंने बाद में अंत में कैसे उन्होंने सृष्टि किया, ऐसे सृष्टि के अलग अलग भाग हुए, लेकिन अंत में सृष्टि का सबसे उत्तम तरीका उन्होंने क्या सोचा, एक पुरुष और एक स्त्री उसको जन्म देना चाहिए, इससे सृष्टि सृष्टि का पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होने लगे फटाफट फटाफट। बोले ऐसे तो कितने जन्म दूंगा, मानस पुत्र ये पुत्र वो पुत्र, कितने जन्म, लेकिन अगर पुरुष और स्त्री एक का जन्म दे देंगे तो मल्टीप्लीकेशन पॉपुलेशन फटाफट होगा, एकदम तेजी से लोग संख्या बढ़ती जाएगी। तो सृष्टि की रचना करने के लिए रजोगुण का उपयोग किया। फिर विष्णु पालन का काम करते हैं, इसको पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो इसमें इंद्र तो आया ही नहीं कहीं पर, भगवान ने उसको बताया इंद्र कहाँ है इसमें, इंद्र क्या करता है इसमें। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण अपने अपनी जीविका कमाता है, अपनी अपना अपना निर्वाह करता है वेदों के पठन पाठन से, है ना, छह लक्षण है ना ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण का उसका पूजा क्या है, छह लक्षण पे वेद का पठन पाठन, यजन याजन, है ना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, और क्षत्रिय का क्या धर्म है, पृथ्वी की रक्षा करना, है ना, पृथ्वी का रक्षा करना है क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का क्या है, कृषि गौ रक्षा, है ना, और शूद्र का क्या है, आगे के जितने भी तीन वर्ण है उनकी सेवा करनी है। देखिए भगवान कितने दयालु है, भगवान का जन्म हुआ था यादव कुल में और महाराज जदु क्षत्रिय थे, ययाति के संतान थे, पता है ना, वो तो आपके स्कूल में नहीं पढ़ने को आता था, हमारे टेक्स्ट बुक में आता था ययाति का स्टोरी, टाइम नहीं आया था स्कूल में पढ़ने में, गया थे कस्टोडी पढ़े थे तो जयाति का स्टोरी कथा हमारे टेक्स्ट बुक में आ गया था। जयाति दिव्यानी शुक्राचार्य की बेटी दिव्यानी, तो उसका विवाह हुआ था जयाति के साथ। जयाति बड़ा ही भोगी किस्म का राजा था, जिसने श्राप के कारण उसका आयु उसकी जवानी छीन ली गई। शुक्राचार्य ने उसको श्राप दे दिया, बोले तूने वचन दिया था तो मेरी बेटी के सिवा और कोई रानी नहीं बनाएगा, और तूने दूसरी रानी बना ली तुझे श्राप मिल जाएगा। तो उसको श्राप मिल गया कि तुम्हारी जवानी चली जाए। तो यह दिन अपने बेटे यदु से जवानी मांग ली, बेटा यू नो ट्रांसफर उस समय हो सकता है कि भाई तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और तुम्हारी जवानी मुझे दे दो। बोले बाप क्यों? तो बोले मुझे और भोग करना है, इंद्रिय भोग करना है। इसके लिए सारे बेटों ने सारे सब उनके जितने भी बच्चे सब ने ना बोले हाँ ऐसे थोड़ी करें, हमारी जवानी आपको कैसे देंगे, हम भोग क्या करेंगे। लेकिन यही बेटे ने तपस वो वैरागी था यदु, बोला क्या करना है इस भोग को करके, ऐसे भी मुझे भोग से मुक्ति चाहिए, माया से मुक्त होना है ना, तो ले लो जवानी ले लो बुढ़ापा ले लो मुझे दे दो। सो यदु वॉज द वेरी फेमस किंग, सो यदु ने यदु क्षत्रिय थे, उनके कुल में यादव, वो यादव हुए सब जितने भी, और ये यादव के वंशज में कृष्ण प्रकट हुए, तो क्षत्रिय थे किंतु वो भक्त वत्सल थे। उनका उनके भक्तों के प्रति देखिए कितना अपने आप को बोलते हैं कि हम वैश्य हैं, निंदन महाराज के साथ थे ना। तो उन्होंने कहा कृष्ण ने कि ये चार वर्णों में हमारा वर्ण क्या है, वैश्य वर्ण है, इसलिए वैश्य वर्ण का क्या है कृषि गौ रक्षा वाणिज्य और देयर इज फोर्थ वन आल्सो चतुर्विधा वार्ता वर्सेट कृषि वाणिज्य गौ रक्षा कुशिदम कुशिदम, चार वैश्य का चार काम होता है कुशिदम। सबसे पहला है कृषि, क्या है खेती करना, गौ रक्षा गायों की, गायों की रक्षा का अर्थ ये नहीं कि केवल कसाईयों से उसको बचाना, गौ रक्षा का अर्थ है उसको अच्छा खाना खिलाना, उसका प्रॉपर टेक केयर करना, उसको मेंटेनेंस करना, उसको रोग मुक्त रखना, ये सब गौ रक्षा में आता है। सो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, एक ही उद्देश्य होता है कतल खाना, लेकिन एक्चुअली गौ रक्षा में सब कुछ आता है। तो कृषि सबसे पहला काम कृषि है, सेकंड होता है गौ रक्षा। कुछ ज़्यादातर लोग पहले सबसे पहला प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस कृषि, दूसरा होता है गौ रक्षा, तीसरा होता है वाणिज्य, वाणिज्य का अर्थ बिजनेस, बिजनेस करना है ना, व्यापार करना, इधर माल खरीदना बेचना ट्रेडिंग करना है ना, तो वो वाणिज्य ये तीसरा होता है। आप सोचिए वैश्य भी नौकरी नहीं करते थे, वैश्य भी नौकरी नहीं करेंगे एज पर हमारा जो जो भी हमारा सिस्टम है वर्णाश्रम सिस्टम, उसमें वैश्य तक कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी केवल एक ही लोग करते थे, कौन शूद्र लोग, वैश्य केवल नौकरी केवल शूद्रों के लिए थी, बुरा मत मानना अगर कोई नौकरी कर रहा हो तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको, ये तो सिस्टम बता रहे हैं आपको बस। वैश्य जो है वो कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, और चौथा क्या होता है कुशीदम, कुशीदम का अर्थ है इन्वेस्टमेंट, जैसे वो पैसा इकट्ठा, उसमें भी इनकम होता है ना, आप पैसा होता है आप इन्वेस्ट करके रखो, उसमें कुछ परसेंटेज आपको इनकम वापिस मिलती है। तो यह भविष्य का काम है। तो फिर भगवान ने बताया कि अगर हम लोग तो ये वैश्य है और हमारा काम है ये कृषि, कृषि के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? वर्षा, है ना। अभी ये वर्षा तो सब जगह आती है, इसमें इंद्र क्या करता है? वर्षा तो ऐसे ही आती है, ये सृष्टि बाई चांस बारिश गिराती है। देखो कितना उल्टा। और भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं अन्नात भवंती भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्न बारिश, अन्न से बारिश से अन्न आता है, यज्ञ करने से बारिश आती है। तो इससे हर एक भक्त, हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। भगवान कहते थर्ड तीसरे अध्याय में कि सबको यज्ञ करना चाहिए, और यहाँ पर भगवान कहते यज्ञ करने से, किसने कहा यज्ञ करने से बारिश आती है? बारिश तो सब जगह आती है। तो असुरी लोग होते हैं, उन लोग का ये उद्देश्य होता है कि बस खाओ पियो ऐश करो। ये अन्न पैदा होता है तो उसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है। कौन लाएगा बारिश? कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या बारिश का? बारिश तो चाहिए कि नहीं? प्रभुपाद कहते थे कि क्या भूख लगेगी तो क्या खाओगे आप? हार्ड डिस्क खाओगे? क्या खाओगे? पिज्जा बांध के? हार्ड डिस्क खा सकते हो क्या? नट्स एंड बोल्ट्स खा सकते हो क्या? हार्ड डिस्क नहीं, उसके लिए तो खाना ही चाहिए ना, अन्न ही चाहिए। तो ये अन्न लोग बनाते हैं तो वो कौन, कोई पैदा करता है क्या? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के रुएं में से गेहूँ उगते हैं क्या? कहाँ से आता है अन्न? जन्म पृथ्वी से। दूध आता है, दूध कहाँ से आता है? आजकल के बच्चों को पूछो दूध कहाँ से आता है? नहीं पता है उसको कहाँ से आता है दूध। बच्चों को पूछो आप, ट्राई करके देखना बेटा दूध कहाँ से आता है, उसको नहीं पता है कहाँ से आता है, क्योंकि गाय दिखती ही नहीं है कभी, उसने कभी गाय देखा ही नहीं। आप में से भी अगर मैं पूछूं कि किसी ने देखा है गाय को, यू नो, दूध गाय में से दूध दोहते हुए, बहुत कम है ना, बहुत कम। हो सकता है शायद आप में से किसी ने ना भी देखा हो गाय को कैसे, यू नो, अगर ये तो चलो देखा हो तो एक है, किसी को आता है नहीं आता, इतना आसान थोड़ी है। सो किसी को पूछो तो ऐसे ही बताएंगे स्टोर में से दूध आता है। स्टोर में से कहाँ? ये कौन दूध को स्टोर वाला बनाया है? कहाँ से ये अन्न कौन पैदा किया है? शक्ति भोग आटा शक्ति तो कौन सी ब्रांड मार दी? शक्ति शक्ति भोग आटा तो पृथ्वी भगवान ने बनाया, वो थोड़ी तुमने बनाया था। अरे ब्रांड लगा दिया हमारा, अमूल का दूध है। अमूल का दूध कहाँ से आया भाई? गाय ने दूध दिया, यू नो उसको। लेकिन भगवान ने सृष्टि की रचना की, लेकिन लोग, सब लोग जैसे होता है ना, कुछ लोग जैसे जैसे सरकार चेंज होती जाती है वैसे वैसे जगह के नाम बदलते जाते हैं। कोई रामलीला मैदान होता है, फिर वो आगे जाके यू नो महात्मा गांधी मैदान बन जाता है, और आगे जाकर और कोई मैदान बन जाता है। एयरपोर्ट के नाम भी चेंज होते रहते हैं, पहले ये था। तो सरकार बदलेगी लेकिन सृष्टि किसकी रहेगी? भगवान की रहेगी। उस पर दावा करते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस सृष्टि का सर्जनहार पालनहार कोई है ही नहीं, कुछ ये सब कुछ गलत है सब कुछ। एक 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 ऋषि थे, चार्वाक ऋषि, क्या बोलते थे वो? वो बोलते हैं कि यावत जीव सुखम जीव, जैसे भी जियो एकदम सुख से जियो, एकदम कुछ भी कर लो यावत जो सर विसुख के लिए क्या करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी के है, हेल्दी रहने के लिए घी खाओ,
घी खाओ
घी खाओ, घी पियो, हेल्दी रहने के लिए घी पियो। और भाई हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है घी पीने के लिए, कोई बात नहीं, क्या क्या कहते हैं ऋणम कृत्वा कर्जा ले आओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है घी पीने के लिए तो कर्जा ले आओ। अब यार कर्जा लेंगे तो चुकाना तो पड़ेगा, बस नहीं मुझा से दिया उससे पुता बोलो राजमन भवित कर्जा ले आओ 10 जगह से, ऐसे ही शरीर तो नष्ट होने जाना, दूसरी बार तो आना नहीं है लोन ले लो 10 जगह से, फिर हाथ उठा तो भाग जाओ दूसरे देश में घी खाओ एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति ने अमेरिका में प्रभुपाद को पूछा, ये तुम्हारा भारत का ऋषि ऐसा बोल रहा है कि यू नो ऐसे इस तरह से बोले घी पियो, वो इंडिया का ऋषि ऐसा बोल रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा वो इंडिया का था इसलिए घी पीने का बोला, नहीं तो मांस खाने का बोलता है यहाँ का तुम्हारा अमेरिका का होता तो वो बोलता मांस खाओ, वो इंडिया का था संस्कारी था इसलिए बोला घी पियो। तो लोग ऐसा सोचते हैं कर्जा ले आओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और कर्जा करेगा भस्मीभूत हो जाएगा तो दूसरे उसको डबल कर्जा लगेगा, उसको दूसरे जन्म में उसका कर्जा भुगतना पड़ेगा, इसको यहाँ पर उसके बेटे को कर्जा भुगतना पड़ेगा, पृथ्वी पर उसके बेटे को कर्जा भुगतना पड़ेगा, उसको वहाँ पर कर्जा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कैसे भी करो सुख से जियो, ऐसे ऐशो आराम से जियो, ऐसा सोचते हो लोग, भौतिकवादी लोग ऐसा सोचते हैं कि सृष्टि का सृष्टि जो कैसे है सब कुछ एक तो कर ऐसे भौतिकवादी होते, दूसरे मायावादी होते, सब कुछ असत्य है, यहाँ पर सब कुछ मिथ्या है, सब सपना है, सपना सपने में क्या होता है, सपने में सब कुछ मिथ्या होता है, सब कुछ अपना ये माइक मिथ्या है, हम बोल रहे हो सब मिथ्या है, ये सृष्टि मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ सपना है, ऐसा वो लोग कर ले बाई चांस, सब कुछ बाई चांस हो गया, सब कुछ कुछ सही नहीं इसमें, सब कुछ भ्रम है हमारा। तो अगर कोई एक भाई एक भक्त को ऐसा बता रहे थे कि भाई सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, 10 बार बोल दिया सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, और बोले भाई सब कुछ सपना है, सब कुछ सपना है, सब कुछ सपना है, तो फिर वो प्रभु वो बोले कि भाई सब कुछ सपना है, बोले हाँ सब कुछ है, तो क्या आप सपने में बोल रहे हो, तो बोले आप सपने में बोलते हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसका अर्थ है कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो भी सपना है, तो हम सपने की दुनिया पे नहीं जीते, सपने में जो कुछ हम देखते हैं, और ये भी आज एक लेक्चर में सुना था, इसमें सपना में आप कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सपने में देखते हो उसका भले ही एक छोटा सा लेकिन टेम्पररी एग्जिस्टेंस होता है, टेम्पररी एग्जिस्टेंस, वो फिजिकल नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा मन का जो स्टोर हाउस है वो खुलता है, उसमें जितना भी जो मेमोरी भी इकट्ठा हुआ है वो सब उसका से उसके आधार से एक नया विश्व बन जाता है, और उसमें हम घूमते रहते हैं, और फिर वो टूट जाता है, छोटा सपना होता है इसलिए हमें उसको उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन जब बड़ा सपना होता है तो हम उसको रियल मानने लगते हैं, है ना। तो वैष्णव आचार्य सपने की तरह इसकी तुलना करता है, लेकिन इसको मिथ्या नहीं कहते, ये मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है, ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, नश्वर है ये चीज। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है तो वो मिथ्या कैसे हो सकती है, लेकिन वो सृष्टि हमेशा नहीं रहती है। लेकिन ये दुष्ट लोग जो होते हैं ये लोग इसका उल्टा अर्थ है, सांप देखते हैं रस्सी देखते हैं, अभी रस्सी को सांप मानना ये गलती हमारी है, रस्सी की तो नहीं है ना, सांप की तो गलती नहीं है, रस्सी को सांप मान लिया। अभी कोई बड़ी प्रसिद्ध मूवी आई है जिसमें बहुत चर्चा हुई, बहुत दंगे हुए, उसको तोड़फोड़ हुई वगैरह सब हुई, तो बोले कि भगवान जैसे कोई चीज़ नहीं, भगवान जैसे कोई चीज़, तो नास्तिकवाद फैला रहा है, भगवान जैसे कोई चीज़ वो इसलिए कह रहा है, बार बार ऐसा दिखाना चाहता है कि सब लोग भगवान के नाम पर धोखा देते हैं ऐसे। अब मैं सोच रहा था, मैं अभी आप अभी समझो कि आपको कहीं भगवान नहीं मिले इसका अर्थ थोड़ी कि भगवान है ही नहीं। अभी आप जाओगे अनाज की दुकान में जाके बोलोगे भैया थोड़ा एक किलो सोना खरीदना है, क्या बोलेगा कोई? अगर आप गलत जगह पहुंच गए हो, मेडिसिन मेडिकल शॉप में जाके आप बोलते हो कि भैया मुझे दो आइसक्रीम कप दे दो, आप गलत जगह पहुंच गए, आपको नहीं मिला, वो बोले कि नहीं यहाँ तो ये तो धोखा देता है, सारे सारे आइसक्रीम शॉप वाले धोखेबाज होते हैं। ये कौन सा तर्क? तो ये मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये रस्सी जो है वो ऐसा, एक बार हुआ था कोई किसी गांव में ऐसा हुआ था, तो रात को सब अंधेरे में गांव में बैठे थे और वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, आग जलाते हैं सब बैठे थे, तो अचानक से कोई आसपास में कोई गया होगा, तो उसने बोला सांप आया दौड़े, सब लोग दौड़ने लगे। अभी सब लोग दौड़ने लगे, उस एक्चुअली सांप था ही नहीं, वो रस्सी था, तो उसने उसको बोला सांप आया, उसने चिल्ला लिया बोले सांप, और सांप आया तो सब लोग भागने लगे, भागते भागते एक व्यक्ति उसके पांव में कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, हाय मेरे सांप ने मुझे दंस दिया उसका कांटा चुभ, और चिल्लाने लगा, सब लोग बोले हाँ सांप ने दंस पकड़ लिया उसको, उसको ले गए, और जो ऐसे वो बिहेव करने लगा, मेरे सांप ने काट लिया ऐसे सांप ने, तो अंदर में कुछ ज़्यादा दिखता भी नहीं था गाँव में, तो ऐसे ऐसे वो बता रहा था, वो सोच रहा था मुँह में थोड़ी देर में फिर आएगा ऐसे तो सांप ने काट लिया ऐसे, तो कोई गांव का कोई आदमी आया, उसने बोला कि ऐसा होता है कि जिसको सांप काटता है ना, जो उसका जहर का प्रभाव ताज़ा होता है, तो उसको जो मिर्ची होती है, अगर मिर्ची खिलाई जाती है उसको, हरी मिर्ची उसको चेक करने के लिए कि उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचा, अगर उस व्यक्ति को मिर्ची तीखी लगे तो इसका अर्थ है कि प्रभाव अभी भी कम है, बहुत ही कम है, और अगर उसको तीखी ना लगे तो समझ लो कि उसको बहुत गहरी चोट आई है इस पर, तो उसको हरी मिर्ची पहले खिलाया, तो मैंने सोचा हरी मिर्ची चबा लिया पूरा हरी मिर्ची, उसको बोला तीखा ना, बोले नहीं दूसरे साइकोलॉजी था उसके मारे, वो सांप मेरे सामने काटा है मुझे, बोले तो दूसरे ने कहा अरे बाप रे इसको तो मिर्ची इसको दिखाने लगा, ये तो गया काम से, अब तो ये तो पूरा मर जाएगा, कल सुबह तक जिंदा मिलेगा, और सुबह उसने देखा थोड़ा उजाला हुआ तो देखा तो पाँव में कांटा चुभा हुआ था और उनका स्किन निकला हुआ था, यू नो, तो बाद में सबको बता रहा है भैया क्या नाटक कर रहे हो, बोले मैं क्या करूँ मुझे सांप लगे, सांप लगे हो तो इस तरह से, तो ये मिथ्या सांप एक, तो उसने दूसरे दिन चेक किया कि कहाँ पर, तो सांप तो था ही नहीं वहाँ पर, केवल रस्सी थी, तो इस तरह से कोई व्यक्ति सोचता है मिथ्या सोचकर, लेकिन एक्चुअली सांप जैसी कोई चीज़ तो है ना, और रस्सी नाम की भी चीज़ है, लेकिन सांप को रस्सी मानना ये हमारी समस्या है, ये अस्थाई जगत को सुख का साधन मानना ये हमारी समस्या है, अगर आप सोचते हो कि हम सुख इसमें से प्राप्त करना चाहते तो ये हमारी समस्या है, सुख भगवान के पास ही प्राप्त हो सकता है, और कहीं पर प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारे तर्क किए, लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों ने सारे तर्क के उत्तर दिए हैं, श्री प्रभुपाद ने भी अपनी कृष्ण बुक में लिखा है कि अगर सब कुछ कर्म ही सब कुछ है तो दो ही प्रकार के लोग एक ही प्रकार के कर्म करने वाले को अलग अलग परिणाम क्यों मिलता है, प्रभुपाद ने कहा कि कितने सारे अच्छे डॉक्टर्स होने के कारण भी बच्चा क्यों मर जाता है, अगर कर्म ही सब कुछ होता है तो ऐसे इस तरह से नंद महाराज को सब बताया, मैं संक्षिप्त में बता दिया आपको, नंद महाराज ने फिर उसको उत्तर दिया कि बेटा तुम्हारी बात चलो मान लेते हैं, लेकिन पूजा तो हमें करनी चाहिए ना देवता, तो बोले इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारे देवता कौन है, गिरिराज गोवर्धन, हमारा पूजा चार चार वर्ण में अनुसार अलग अलग देवता होते, तो हमारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, आजकल को किसको पूछो रजोगुण तमोगुण क्या है, बच्चे को भी नहीं पता, और कृष्ण देखो कैसे वो सब चौंक गए कोप लोग, इतना बच्चा इतना सब बता रहा है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब बता रहा है, भगवान ने बताया फिर इस तरह से, हमारा भगवान ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है, हमारा गाँव नहीं है, यहाँ पर ये श्लोक में बताया, माई डियर फादर, आवर होम इज नॉट इन द सिटी और टाउन और विलेजेस, वी आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वी ऑलवेज लिव इन द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स. हम लोग तो जंगल में घूमने वाले लोग हैं, वनों में घूमने वाले. तो देखो हमारी कोई हम तो ऐसा तो है नहीं कि किसी नगर के राजा हो, है ना, किसी नगर के हम राजा, ऐसा तो कुछ है नहीं. कोई जमींदार है ऐसा तो नहीं है, है? और तो हमारे पास क्या, हम तो वनों में भटकने वाले, अपना घर भगवान तो ऐसे कहते हैं घूमने वाले लोग, वृंदावन में घूमते थे ज़्यादातर. तो बात सही है कि किराए पर रहने वाले को अपने घर में रहने का नहीं बोलते. जो व्यक्ति किराए पर रहता है ना, वो अपने घर पे नहीं रहता है, तो उसके पास अपना घर अगर पूछा जाए तो है या नहीं है, नहीं है उसको अपना घर नहीं है, तो गृह नहीं है उसके पास. तो इस तरह से भगवान ने कहा कि हम तो पहाड़ों के साथ रहते हैं, और पहाड़ किसी का संपत्ति हो सकता है? पहाड़ तो भगवान की संपत्ति है, है ना. तो इस तरह से फिर भगवान ने गिरिराज जी का पूजा का निर्देश किया, लेकिन वो चर्चा हम आदमी बात करेंगे, टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट टाइम गोवर्धन के विषय में. सो सब भक्तों को ये भी समय जो अभी आपको बताया संक्षेप में, तो ऐसी ये इस प्रकार का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भक्तों को होना चाहिए कि भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा कर्तव्य भगवान की शरणागत होना है. ऐसे कर्मवाद से हमें सीखने को ये प्राप्त हुआ कि भगवान के इच्छा से सब कुछ होता है. प्रकृति को कहता है प्रकृति करता है, प्रकृति करता है. एक भक्त एक व्यक्ति को मेरे होता है बोले प्रकृति प्रकृति करती है, सब कुछ प्रकृति करती है, प्रकृति करती है, और 10 बार बोल रहे सब कुछ प्रकृति करती है, सब कुछ प्रकृति करती है. तो वो भक्त थोड़ा जिन्हों परेशान होकर बोले, अगर प्रकृति तेरी दादी लगती है क्या? कब कब बोल रहे हैं प्रकृति लग रही है, प्रकृति करती है. तो प्रकृति किससे हो, कैसे जन्म, प्रकृति किसकी है, किसकी प्रकृति? भगवान की प्रकृति. तो प्रकृति भगवान के बिना प्रकृति क्या करेगी, है ना. प्रकृति स्वभाव, प्रकृति का अर्थ क्या है, स्वभाव. किसका स्वभाव? भगवान का स्वभाव. तो भगवान की इच्छा के बिना प्रकृति क्या कर सकती है? भगवान भगवद्गीता में कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति. तो प्रकृति भगवान के द्वारा संचालित है. तो इसलिए हमें इस प्रकृति, सबसे पहले तो ये देखिए प्रकृति कितनी महान है कि हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, यू नो, कुछ भी नहीं कर सकते. हमारे प्राइम मिनिस्टर के वो उनकी जो बड़ी कार है उसमें अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो पेट्रोल खुद नहीं बना सकते, वो खुद नहीं बना सकते पेट्रोल. उनकी कोई इतना इतने पावरफुल है, यू नो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतना पावरफुल है, लेकिन उनके यू नो वो भी पेट्रोल खुद नहीं बना सकते. उसके लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है? प्रकृति के पास. और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की. तो भगवान से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है. तो इस तरह से हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए, और दुख के स्थान में सुख ढूंढने के लिए इधर उधर लालायित नहीं होना चाहिए. प्रभु जी कहीं तो सुख मिलेगा ना, इधर जाए उधर ये करेंगे वो करेंगे, हमें नवरे बैठे क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना. सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो क्यों करना है? अगर तुम सही में तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है तो भगवान का नाम लो ना. बोले भगवान का नाम लेने से क्या रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा? आप प्रयास करके देखो, भगवान की शरणागत हो जाओ, फिर आप देखना 16 माला करके देखो, अगर 2 महीना करके देखो, अगर कोई समस्या है तो बताना हमें, गारंटी. सोलह माला करके देखो, तब वो भक्त अपने आप ही समझता है कि वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है किसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है? भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है. और भगवान व्यक्ति को उतना ही देते हैं जितना कि वो जिसके वो योग्य है, उससे अधिक नहीं. और ऐसे भी करना क्या है, ऐसे रहना ही नहीं इधर। वो यदु महाराज क्या बताए, और हाँ लो जाओ ले जाओ मेरी जवानी, क्या चाहिए मर्जी। ऐसी जगह पर रहकर आपको क्या अच्छा लगता है, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हो, जहाँ पर कोई सब जगह परेशानी पर रहा है, ऐसी जगह पर रहकर क्या करना है आपको। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी, भाग देना चाहिए? नहीं, हरि नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भक्तों की संगति करो, मन को स्थिर करो भगवान के चरणों पर, और जीवन को सफल बना रखना चाहिए। So we stop here. कोई प्रश्न तो पूछिए।
ऐसा कहा जाता है कि means the rebirth, मतलब जो कर्मों के basis पर होता है, that concept is wrong.
Well, concept is not wrong. Concept सही है, लेकिन कर्म अपने आप में कुछ नहीं है। केवल कोई व्यक्ति कर्म, तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे कर्म करने वाले जो होते हैं उसमें से किसी को भगवत धाम भी जाना जा सकता है, तो वो उस व्यक्ति का क्या हो? कर्म, कोई व्यक्ति अगर कर्म के आधार पर सब कुछ होता है तो, लेकिन वो कर्म करता कौन है और कर्म की फल देते देने वाला कौन है? और भगवान चाहे तो वो कर्म की, कर्म में कोई भी चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकते हैं, है ना। और जो भक्त होते हैं, भगवान बोलते हैं कर्मा में निर्दहति, मैं उसके सारे कर्म नाश कर देता हूँ, उसके पाप नाश कर देता हूँ, तो कर्म महान नहीं है, भगवान महान है। कोई व्यक्ति अगर केवल कर्म का आधार लेकर भगवान का तिरस्कार करेगा तो वो केवल भोग भोग करेगा, उसका अंतिम भगवान कौन है? कर्म। ये बात हम उसको प्रभुपाद भी कहते हैं कि ये गलत नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है, लेकिन स्वतंत्रता नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अगर सब कुछ कर्म के आधार से होता है तो फिर हमारी स्वतंत्रता रही नहीं कुछ, है ना। अगर आपका आप कहोगे कि नहीं मेरे कर्म के आधार से अभी 10 मिनट के बाद मुझे घर जाना ही है, तो आपकी स्वतंत्रता फिर रही नहीं कहीं। अगर आप चाहो तो नहीं भी जा सकते हो। तो कर्म स्वतंत्रता से नीचे है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो जो भी हम अभी कर्म कर रहे हैं वो कर्म के क्या क्या आधार है? एक तो हमारी इच्छा, प्रकृति और भगवान का अप्रूवल। तब तक हम कर्म नहीं कर सकते। तो ये कर्म जनरेट भी करते हैं हम यहाँ पर मनुष्य के रूप में, कर्म जनरेट भी होता है और कर्मों का भुगतान भी होता है। तो कर्म ही सब कुछ नहीं है। वेल दिस टॉपिक इज डिटेल, हमने तात्पर्य हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन हमने ऊपर ऊपर से नास्तिक और फिलोसॉफी बताया कर्म के सिद्धांत को। सो प्रभु भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म, थर्ड चैप्टर में आप प्राप्त होगा कि कर्म से कोई मुक्त नहीं है, लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए, मेरे लिए कर्म करना चाहिए। कर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और कोई प्रश्न? We'll stop here.